Surgióme.
नमस्कार, सुर्खियों में कार्यक्रम में आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज पाठक और हम चर्चा करेंगे जर्मनी के चांसलर की भारत यात्रा, द्विपक्षीय संबंधों में नया अध्याय विषय पर। हमारे साथ चर्चा के लिए आमंत्रित हैं पूर्व राजनयिक गुरजीत सिंह। कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
धन्यवाद।
भारत और जर्मनी दोनों दुनिया के प्रमुख देशों में गिने जाते हैं। प्रधानमंत्री ने आपसी बातचीत के बाद संबोधन में हीरक जयंती की चर्चा की है और कहा है कि हम दोनों देश अपने संबंधों के 75 वर्ष मना रहे हैं।
चांसलर मर्ज की ये यात्रा एक विशेष समय हो रही है। पिछले वर्ष हमने अपने रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष पूरे किए और इस वर्ष हम अपने राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष भी मना रहे हैं। ये माइलस्टोन्स केवल समय की उपलब्धियां नहीं है, यह हमारी साझा महत्वाकांक्षाओं, परस्पर विश्वास और निरंतर सशक्त होते सहयोग के प्रतीक है।
सबसे पहले तो हम यही समझना चाहेंगे कि फिलहाल जो महत्वपूर्ण आपसी संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए कदम उठाए गए हैं वो क्या हैं और किस रूप में हमारे संबंधों को नई दिशा में ले जाएंगे।
जैसे आपने कहा कि ये विजिट मार्क करती है कि हमारे रिश्तों के 75 साल हो गए, साथ ही साथ हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की भी सिल्वर जुबली है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि एक साल पहले से अब तक जो संसार में उथल पुथल हुआ है उसका सामना करने के लिए भारत और जर्मनी को अपना पूरा दम लगाना है और जो रिश्ते मजबूत कर रहे थे उनको नई दिशा देनी है, क्योंकि ये अदलते बदलते संसार में हमें स्थिरता लानी है, हमें एक ट्रस्ट लाना है और हमें उसको दिशा देनी है। ये सबसे बड़ा महत्व है इस मर्ट्स विजिट का।
आपने जिन बातों से चर्चा की शुरुआत की कि दुनिया की जो अभी भू राजनीतिक स्थितियां हैं उसमें आपसी विश्वास बढ़ाने के साथ दुनिया को दिशा देने की आवश्यकता है, इसे हम थोड़ा और विस्तार से समझना चाहेंगे कि जिस माहौल में चांसलर आए हैं और जो अभी की स्थितियां हैं और हमने आपसी संबंध को मजबूत करने के लिए जो घोषणाएं की हैं, जो कदम उठाए हैं, वह किस तरह सहायक होंगी।
हमारा जो रिश्ता है कई अरसों से चली आ रहा है, लेकिन उसमें एक उछाल जो अब नजर आ रहा है उसकी वजह यह है कि जर्मनी को अब एक विकल्प की जरूरत है। उसके बिजनेस को विकल्प की जरूरत है, उसके स्ट्रेटेजिक को एक नई दिशा की जरूरत है, इसलिए वो यूरोप से बाहर उठकर चीन से आगे बढ़कर एक दिशा ढूंढ रहे हैं। इस दिशा में भारत उनको एक उभरती शक्ति, मजबूत इकोनॉमी के रूप में नजर आ रहा है। हमारे जो एक जैसे मूल्य है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज, उनके ऊपर जर्मनी को बहुत फक्र है। इसलिए जर्मनी समझता है कि आज तक तो वो कई सालों से चीन के ऊपर मुनाफे के लिए निर्भर था, लेकिन उसके निवेशकों को नई मार्केट्स ढूंढनी है और इसलिए वो भारत में एक नई रुचि दिखा रहे हैं। जहां स्ट्रेटेजिक मामलों का हिस्सा है वो है कि इंडो पैसिफिक अब जर्मनी के लिए महत्वपूर्ण बन चुका है और इंडो पैसिफिक में भारत की जो एक रोल है वो उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। पिछले साल उन्होंने एक भारत स्ट्रेटजी पेपर जारी किया था, दो साल पहले इंडो पैसिफिक गाइडलाइन जारी की थी। इन दोनों स्ट्रेटजिक पेपर्स में भारत का एक बहुमूल्य रोल नजर आता है, इसलिए मैं समझता हूं कि चाहे आर्थिक स्थिति हो चाहे स्ट्रेटजिक स्थिति हो उसमें नई दिशाएं नजर आएंगी।
यहां पर श्रोताओं, हम आपको जानकारी देना चाहेंगे कि अभी का जो माहौल है उसमें दुनिया भर के देश अपनी रक्षा आवश्यकताओं पर निवेश काफी बढ़ा रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री ने आपसी संबंधों को आगे बढ़ाते हुए दोनों देशों के बीच रक्षा उद्योगों के बीच सहयोग को मजबूत बनाने की आवश्यकता जताई है।
रक्षा और सुरक्षा में बढ़ता सहयोग हमारे आपसी भरोसे और साझी सोच का प्रतीक है। रक्षा व्यापार से जुड़ी प्राथमिकताओं को सरल बनाने के लिए मैं चांसलर मर्ज का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हम रक्षा उद्योगों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए एक रोडमैप, उस पर भी काम करेंगे, जिससे को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन के नए अवसर खुलेंगे।
यहाँ पर यदि हम गुरजीत जी समझना चाहेंगे कि भारत और जर्मनी दोनों के बीच का जो आयात निर्यात है वह फिलहाल कैसा चल रहा और आने वाले दिनों में क्या संभावनाएं, किन क्षेत्रों में संभावना दिख रही है आपको?
जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा ये बिल्कुल उचित है, क्योंकि ज्यादातर जो जर्मनी की इकोनॉमी है वो मुनाफे के लिए चीन के ऊपर निर्भर है, लेकिन चीन से अगर हटना है तो भारत के साथ कुछ खोज करनी पड़ेगी कि हम भारत के साथ क्या करें, क्योंकि जो चीन के साथ कर रहे हैं वही तो भारत में नहीं हो सकता है। इसलिए तकनीकी बेस पे, साइंटिफिक बेस पे, इनोवेशन बेस पे, ग्रीन बेस पे कई चीजें निकल रही, लेकिन इस बारी का जो जॉइंट स्टेटमेंट है उसमें पहला अव्वल नंबर दिया गया है डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन। और जो प्रधानमंत्री ने कहा कि जॉइंट प्रोडक्शन जॉइंट डेवलपमेंट की बात है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जर्मनी ने पिछले 2 साल में तकरीबन 500 बिलियन यूरो एक बजट में डाले हैं, जिसमें से उसकी जो सुरक्षा की प्रोडक्शन है वो आगे बढ़े। ये सब कुछ जर्मनी अपने आप नहीं कर सकता, उसको पार्टनर्स की जरूरत है। इसलिए भरोसेमंद पार्टनर भारत हो सकता है, जहां पर अगर वो डिफेंस प्रोडक्शन की बात करें तो उनको बेटर कॉस्ट पे एफिशिएंट इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी मिल सकती है, इसलिए इसका एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है।
यहाँ आपने बड़ी अच्छी बात कही, भारत में एक और कुशल पेशेवर हैं, अच्छी संख्या में युवा तैयार हो रहे हैं और जर्मनी में तकनीक है, दोनों का संगम, दोनों का आपसी संबंध यदि हम समझना चाहें कारोबार आगे बढ़ाने में तो किस दिशा में जाता आपको दिख रहा?
ये मैं कहता हूँ भारत और जर्मनी की सक्सेस स्टोरी है। जब मैं जर्मनी में राजदूत था तो तकरीबन 5,000 भारतीय स्टूडेंट वहां थे, अब 60,000 है। उसके बाद जो ये पैसेज टू इंडिया एक उन्होंने बिल पास किया था जर्मन पार्लियामेंट में, उसके अंतर्गत एक नया वीजा दिया गया जिसपे भारतीय जो पढ़े लिखे लोग हैं, स्किल्ड लोग हैं, वो जर्मनी में काम भी कर सकते। तो ये दोनों चीजें आगे बढ़ रही हैं और भारतीयों की तादाद जर्मनी में तेजी से बढ़ रही है। इसमें वही है कि जो जर्मन इकोनॉमी और सोसाइटी है उसमें यंग लोग नहीं है, उनकी पॉपुलेशन एज हो रही है, तो उनको यंग लोग, वर्किंग एज लोग, कंट्रीब्यूटिंग लोग चाहिए। भारतीयों का एडजस्टमेंट ज्यादा है, कंट्रीब्यूशन बढ़कर है, इसलिए भारतीयों को वहां पर अधिक वैल्यू दी जाती है।
यहाँ पर श्रोता हम जानकारी देना चाहेंगे आपको कि प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जर्मनी केवल आर्थिक साझेदार ही नहीं है बल्कि वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध साझेदार भी हैं, दो राष्ट्र भी हैं।
हम एकमत है कि आतंकवाद पूरी मानवता के लिए एक गंभीर खतरा है। भारत और जर्मनी इसके विरुद्ध एकजुट होकर पूरी दृढ़ता से लड़ाई जारी रखेंगे। भारत और जर्मनी सहमत है कि ग्लोबल चैलेंजेस से निपटने के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में सुधार अत्यंत महत्वपूर्ण है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार के लिए G4 के माध्यम से हमारा संयुक्त प्रयास इसी सोच का प्रमाण है।
यहाँ पर हम आपके माध्यम से समझना चाहेंगे कि आतंकवाद के मोर्चे पर एक होना, साथ ही जो वैश्विक संस्थाएं हैं वहां पर सुधार की मांग हमारे प्रधानमंत्री लगातार करते रहे हैं कि जैसी परिस्थितियां बदल रही हैं वैसे ही अब अनुपात बदलना चाहिए और नए लोगों का प्रवेश इन संस्थाओं में होना चाहिए, क्या टिप्पणी करना चाहेंगे आप?
अगर हम पूरे रिश्ते को दोहरा रहे हैं, नई दिशाएं दे रहे हैं, एक तरफ तो इंडो जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन को रिन्यू किया गया, दूसरी तरफ आप देखें मोबिलिटी, ग्रीन हाइड्रोजन, इनोवेशन, ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी, ये सब चीजों के ऊपर जो हमारी अग्रीमेंट्स हैं वो आगे बढ़ रही हैं और नई जॉइंट डिक्लेरेशंस आ रही हैं। तो ये तो बड़ा स्पष्ट हो गया है कि कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां भारत और जर्मनी अब घबराते हैं कोऑपरेशन। पहले स्पेस के ऊपर ज्यादा नहीं होता था, अब तो स्पेस भी है, सुरक्षा के मामले भी है। एक दिलचस्प बात यह है कि जब भारतीय जर्मनी के थ्रू ट्रांजिट करते हैं, किसी और देश जाने के लिए उनको जर्मन वीजा, ट्रांजिट वीजा की जरूरत होती थी। अब वो हटाई गई है, तो ये एक सुविधा है लोगों के आने जाने की। तो ये जो मोबिलिटी को भारत और जर्मनी बहुत सीरियसली ले रहे हैं, और ये हमें अलग-अलग क्षेत्र में बहुत लाभदायक रहेगा।
यहाँ पर यदि हम समझना चाहें कि रिन्यूएबल एनर्जी, उसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन और इस तरह के जो वर्तमान आवश्यकताएं हैं आने वाले दिनों को देखते हुए और मानवता को देखने के लिए, क्योंकि फॉसिल ईंधन का नुकसान पूरी दुनिया झेल रही है, क्या संभावना लग रही है आपसी कह लें मैत्री से इन क्षेत्रों में काम आगे बढ़ाने की?
जर्मनी और भारत की ग्रीन पार्टनरशिप जो है वो सबसे गहरी और पुरानी है। इस समय जब कई देश क्लाइमेट चेंज को कह रहे हैं कि ये इसकी परवाह ना की जाए, इस बारी बड़ा स्पष्ट है कि भारत और जर्मनी तो उसके हक में रहेंगे और काम करते जाएंगे। अब जो पहले भारत की ग्रीन पार्टनरशिप, उसमें कई पहलू आ गए हैं। उसमें पहले तो सिर्फ ग्रीन पावर ट्रांसमिशन लाइंस थी, फिर सोलर पावर प्लांट्स आए, अब क्या होता है कि मेट्रोज बनती हैं, बैटरी ऑपरेटेड फेरीज बनती हैं, बैटरी स्टोरेज पार्टनरशिप बन रही है, और ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के ऊपर जो पहले रोड मैप था, अब वो कमर्शियल बेस पे आ गया है। जर्मनी ने ग्रीन अमोनिया खरीदने की जो मार्केट प्लेस है वो भारत के लिए खोल दी है। तो भारत में जो उत्पाद होगा ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रीन अमोनिया का, वो हम जर्मनी को भेज सकते हैं और वहां उनकी मार्केट में यूज किया जाए।
यदि हम ऑटो ई मोबिलिटी और बैटरी इकोसिस्टम को समझना चाहें तो दोनों के बीच क्या संभावनाएं लग रही हैं, खासतौर से ईवीएस, चार्जिंग इंफ्रा, बैटरी रिसाइकलिंग, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें कहाँ कहाँ आपसी हमारे एक दूसरे के साथ आदान प्रदान बढ़ सकता है?
इसमें एक तो नया जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट सभी कंडक्टर्स पे है, दूसरा क्रिटिकल मिनरल कोऑपरेशन पे है। ये दोनों जो चीजें हैं वो न्यू टेक्नोलॉजीज और ग्रीन एनर्जी को सपोर्ट करती है। तो ग्रीन हाइड्रोजन के अलावा ये जो ग्रीन क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज और बैटरीज हैं, इनको सुविधा मिलेगी, और जो जर्मनी की कार कंपनीज हैं वो अब आस्ता आस्ता ईवीज की तरफ ज्यादा जा रही हैं, तो उनको भारत में बैटरी इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चार्जिंग हो या रिसाइकलिंग हो, तीनों की जरूरत पड़ेगी। इसलिए मैं समझता हूं ये JDI बहुत महत्वपूर्ण है।
यहाँ पर यदि हम आपसी कह लें जो सांस्कृतिक संबंध है, बड़ा बदलाव आया है। शिक्षा के लिए हमारे यहाँ से लोग वहां जाते हैं, तो वहां से हमारे यहाँ आने वाली चीज, आपसी जो लोगों का आना जाना है, वह किस दिशा में बढ़ रहा है?
टूरिज्म जो है वो जर्मनी से इंडिया इतनी नहीं बढ़ रही। दूसरी रही बात, जो जॉइंट प्रोजेक्ट्स है साइंस में, टेक्नोलॉजी में, जैसे जॉइंट स्टेटमेंट में लिखा है कि IITs और टेक्निकल यूनिवर्सिटीज के बीच में जो संबंध है वो अच्छे चल रहे हैं, लेकिन जिस तादाद से भारत से टूरिस्ट या स्टूडेंट्स वहां जाते हैं वो नजर नहीं आता जर्मनी से भारत आते हुए।
इसके लिए यदि हम ये समझना चाहें कि क्या प्रयास हमें करने चाहिए, वो कहाँ देख रहे हैं आप?
सबसे पहले तो बिजनेस का एक्सपेंशन होना चाहिए। अब 23 बड़े CEO आए हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि नई दिशाएं दी जाए, नए निवेश किए जाए, जो ट्रेड है उसको एक्सपैंड किया जाए। तो अगर ये सब होता है तो फिर आप देखेंगे कि जर्मनी से बिजनेसमैन, खासकर लघु उद्योग के बिजनेसमैन, ज्यादा आना शुरू हो जाएंगे। उनके आने से पर्यटन भी बढ़ता है और फिर बाकी टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशंस भी आगे बढ़ती है।
यानी कारोबार दोनों देशों के बीच जिस तरह बढ़ेगा, उसी अनुपात में सांस्कृतिक संबंध भी और तेज होते चले जाएंगे। यहीं पर श्रोताओं की ओर से गुरजीत जी, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे।
आपका धन्यवाद।
श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR तथा यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
सुर्खियों में